interview with Mr. Maheshwar Singh Bhamra at the Nirankari Center on 7th September 1994. Aapka naam, umar aur janm kis jagah mein hua? Ye jankari pehle dijiye.
Mera naam Maheshwar Singh Bhamra hai aur mera janam Pakistan mein hua tha, fir hum India mein aaye aur mera janam 4/7/34 को हुआ.
पाकिस्तान में किस शहर में हुआ था आपका जन्म?
मियाँ चन्नू के नज़दीक एक गांव था, सतचक करमली वाला, वहाँ डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में है वो शहर. तो उस गांव में मेरा जन्म हुआ था. मेरे पेरेंट्स यहाँ से जाकर उधर सेटल हुए थे.
आपके घर में कितने लोग थे फैमिली में?
उस वक्त जब मेरा जन्म हुआ तो उस वक्त हम 4 भाई और 3 बहनें थे और माँ बाप थे, मेरा ताया जी थे और मेरी ग्रैंड मदर थे.
आप यहाँ लेस्टर में कब आए?
मैं लेस्टर में जनवरी 1967 में आया और इंग्लैंड में मैं जनवरी 1964 में आया था.
पहले कहाँ रहते थे आप?
दरअसल पहले भी मैं लेस्टर ही आया था, फिर मैं 3.5 साल के लिए ग्लासगो चला गया और फिर जॉब इधर मिल गई तो मैं इधर आ गया.
आप ये निरंकारी सेंटर में कब से इन्वॉल्व्ड हैं?
निरंकारी सेंटर में तो मैं इन्वॉल्व 1978 से हूँ, लेकिन निरंकारी मिशन में मैं इन्वॉल्व 1967 से ही हूँ. और मिशन में पहले मुझे बाबा गुरबचन सिंह जी 1967 में जब इधर आए तो मुझे पता लगा कि वो संतनकारी मिशन के हेड हैं. तो मैं भाई साहब ज्ञान सिंह जी और प्रीतम सिंह जी की मदद से इनको मिला और इन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि संसार में रहने के लिए ईश्वरी ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है. तो निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने मुझे बुलाकर इसके बारे में बताया कि ईश्वर हमारे चारों तरफ है और ये जाना जा सकता है. और मैं भी चूँकि काफ़ी देर इसकी खोज में, इसकी वाकफियत लेने के लिए जगह जगह कई महात्माओं से पूछा था और मुझे कोई इस बात की समझ नहीं आती थी कि ईश्वर देखा भी जा सकता है, जाना भी जा सकता है. लेकिन जब इस बात का इन्होंने मुझे सामने बिठाकर निर्णय किया कि ये जो ताकत है ये देखी जा सकती है चारों तरफ ज्ञान के रूप में जिसको हम कहते हैं, तो निर्णय करने से ये मुझे पता चला कि यही परमात्मा है या चारों तरफ जो हर चीज़ में समाया हुआ है और हर चीज़ इसके अंदर बस रही है. तो वो 15-20 मिनट बैठा कर उन्होंने जब ज्ञान खोला तो मुझे ये समझ आई. तो फिर उस वक़्त से मैंने ये समझ लिया कि जो कुछ भी इस संसार में ग्रंथों में लिखा है वो सच लिखा है और ये सच जो है सतगुरु के बिना मिल नहीं सकता. उसके बाद फिर मैं इन्हें सतगुरु मानकर इनके साथ जुड़ गया और इनकी सेवाओं को मैंने हासिल किया.
यह जो सेंटर है प्रिवेंट स्ट्रीट पर, वह किस साल में शुरू हुआ था?
ये सेंटर बाबा जी ने 1978 में खरीदने के लिए मुझे कहा कि आप यहाँ पर कोई जगह देखो जहाँ आपकी संगत लग सके. तो दास ने अखबारों में देखा, इधर उधर घूमा तो ये सेल पे लगा हुआ था. ये सोसाइटी ऑफ ब्लाइंड्स की तरफ से था इधर उस वक़्त. तो 1978 में उन्होंने सेल पर लगाया और इस बिल्डिंग को फिर हमने इस आधार पर ख़रीदा कि यहाँ हम कोई आगे प्रोग्रेस करें, बच्चों के लिए भी ये सेंटर खोले, एडवाइस सेंटर भी बन सके, सपोर्ट सेंटर भी बन सके। तो बाबा जी ने यही आदेश दिया कि अगर आप इस सेंटर को बच्चों के फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करें ताकि वो रातों को इधर उधर नहीं घूमें और इधर आकर अपनी सपोर्ट्स करें, और डे टाइम में आप इधर इसको सत्संग भवन का एक ज़रिया बनाएं, तो ये दोनों काम कर सकता है, आपका स्पिरिचुअली भी और सोशली भी आपके ये काम आएगा। तो हमने 78 में ये बिल्डिंग खरीदी, और ये खरीदी थी हमने सोसाइटी ऑफ ब्लाइंड से, तो 78 में खरीदा इनको।
तब इसका क्या भाव था?
तो हमको ये 22.5 में मिली, तो 22.5 में वो एग्री हो गए थे। फिर बाबा जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि ये सोसाइटी फॉर ब्लाइंड्स है, तो आप इसको डोनेशन में 250 पाउंड और दे दो। तो फिर हमने उनके कहने के बिना ही हमने इनको डोनेशन के लिए 250 और दे दिया, तो ये 23,000 में हमारा सौदा इनका पक्का हो गया था।
आपने यह एरिया क्यों चुनी सेंटर बनाने के लिए?
ये एरिया तो हमने इसलिए चुना, एक तो ये टाउन सेंटर का नज़दीक है, दूसरे यहाँ के जो लोग थे वो इस चीज़ को डिमांड में थे, मांग में थे। यहाँ पर ऐसा कोई और जगह बहुत नज़दीक नहीं था जो खेलने कूदने के लिए शाम को बच्चों के काम आए। जगह हो और होंगी, लेकिन ये हाई फील्ड एरिया में, क्योंकि ये पछड़ा हुआ एरिया था, तो इसको भी मैं तो कहता हूँ कि ये कुदरती कोई सिलसिला बन गया कि गवर्नमेंट यहाँ की सिटी काउंसिल वाले भी यही चाहते थे, और फिर बाबा जी का भी यही ध्यान हुआ। तो मैं तो कहता हूँ कि ये कोई ईश्वरी विधान के मुताबिक ही हमको ये जगह मिली है। तो हमने तो ये जगह कोई इस प्लानिंग से नहीं चुनी कि बहुत हम कोई समझदार थे, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये कुदरती तौर पर हमको ये जगह मिल गई जो बहुत ही सूटेबल थी हमारे लिए भी और यहाँ के नज़दीक के लोगों के लिए भी।
उस समय यहाँ पर जो लोग रहते थे वो उनका क्या फीलिंग था और वो लोग ये सेंटर कैसे यूज़ करते थे?
जो पहले थे वो तो आपको मैंने बताया कि सोसाइटी फॉर ब्लाइंड्स थे, लेकिन उससे पहले 1958 में ये जो सेंटर था ये सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स का था, और उनकी ये तकरीबन ख्वाहिश थी कि ये सेंटर हिस्टोरिकल बिल्डिंग में वो लोगों ने इसको लिखा रखा था, तो हमें भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग होने के नाते इस सेंटर में ये हमें बहुत सुविधा मिली कि इसकी जो अमेंडमेंट है, आल्ट्रेशन है, वो ऐसे ढंग से की जाए जो कि ये आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी ये हिस्टोरिकली रहे। तो उनकी फीलिंग अच्छी थी, हमारे साथ नज़दीक के लोगों ने भी ऐसा बर्ताव नहीं किया। पहले पहल ज़रूर हमें वो लोगों ने एक लेटर भेजा कि आप 11 बजे से पहले आप बंद कर दिया करें। तो फिर जब उन्हें पता चला कि ये तो एक धार्मिक संस्था है और बहुत ही कोऑपरेटिव है, तो फिर उन्होंने वो भी कोई ऐसा उसके बाद हमें कुछ नहीं कहा। तो हमें नेबर ने, एक ने सिर्फ एक दफ़ा कहा था कि आप 11 से पहले नहीं, 11 के बाद नहीं इसको खुला रहने देना, तो फिर तो उसके बाद वो भी नहीं आए। तो इनका जो रवैया था इन लोगों का वो काफ़ी हमारे साथ ठीक था। और फिर यहाँ से ये कुछ काले लोग भी, कुछ जो मोहम्मडंस लोग भी इधर आकर ये सेंटर को इस्तेमाल करते रहे और फिर सपोर्ट्स में वो हिस्सा लेते रहे। और इसके दौरान में ही हमने इस बिल्डिंग को शादी के लिए भी रजिस्टर करवा लिया, और फिर इसको हम ऑर्गेनाइजेशन को चैरिटी नंबर भी हमें मिल गया कि ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरह हम इसको इम्प्रूव करते रहे। तो इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ी कि ये जो हाल है ये छोटा है, फिर हमने इसको अप्लाई कर दिया कि हमें बाहर इसके हाल बनाने की इजाज़त दी जाए। तो हाई फील्ड टास्क फोर्स, ये एरिया तो हाई फील्ड का है ही, तो इसमें एक हाई फील्ड टास्क फोर्स थी जिन्होंने ये समझा कि ये संस्था बहुत ही उद्यम कर रही है, तो उन्होंने उनके पास हम जाकर ग्रांट के लिए अप्लाई किया, तो उन्होंने हमें 1,35,000 pounds देकर ये जगह आगे में बनाने के लिए हमें मदद की। और इसमें फिर हमने इनर एरिया प्रोग्राम से भी काफ़ी उस वक्त सिलसिला चलता था, तो सीपी प्रोग्राम भी था, इन सब प्रोग्रामों में हमें सपोर्ट्स के लिए एडवाइस सेंटर के लिए कुछ ग्रांट्स मिलती रही और हमारे ट्रेनीज इधर आके चलते रहे, तो बहुत इन लोगों को मदद मिली। यहाँ से तकरीबन 34 पीपल वेल एजुकेटेड होकर एडवाइस सेंटर में से निकले, कहने का भाव कि इनमें से 4 को तो मैनेजर की जॉब मिली बाहर में जाकर, 4-5 ने अपना वो काम किया जो एडवाइस सेंटर्स के अपने सेंटर खोल लिए, और कुछ ने अपनी सिटी काउंसिल में अच्छी अच्छी जॉबें ले ली, तो 24-25 के करीब ऐसे लोगों ने अच्छी अच्छी जॉबें यहाँ से सेंटर से निकल कर लीं। तो आजकल भी ये जो ऐसा ही चल रहा है, जो भी इधर से ट्रेनिंग हो के जाता है, और जो बाहर हमने वो हाल जो बनाया था उसको हमने लेस्टर एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग स्कीम को हमने दे रखा है, और उधर ट्रेनिंग भी होती है, और हमारा जो ओरिजिनल हाल है छोटा उसमें सपोर्ट्स होती है, तो ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा है।
यह बिल्डिंग कितने साल पुरानी है, किस साल में बनी है?
ये 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, 1890 में तकरीबन ये बनी है बिल्डिंग, इसका जो बोर्ड बाहर लगा हुआ है, तो एग्जैक्टली 100 साल ये बिल्डिंग बनी को हो चुके हैं, ऊपर ही हैं 1-2 साल। तो अभी तक इसका जो ओरिजिनल फ्रंटेज है, ओरिजिनल साइड्स हैं, हमारा जो सीमेंट के बने हुए वो पत्थर के बने हुए पत्थर जो लगे हुए हमारे सीमेंटेड पिलर्स हैं वो साइड में ऊपर लगे हुए हैं, तो हमने इसको काफ़ी संभाल से रखा है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी।
अब जो लोग ये बिल्डिंग यूज़ करते हैं वो कम्युनिटी कैसी है, उसमें सभी निरंकारी हैं या हिंदू मुस्लिम पंजाबी सब किस्म के लोग हैं?
एक्चुअली निरंकारी मिशन ही सब कम्युनिटीज़ का मिशन है, इट्स कॉल्ड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, क्योंकि निरंकारी बाबा का यही एक विधान है कि किसी को भी किसी के मज़हब से चेंज नहीं किया जाए, उसको सिर्फ यही कहा जाए कि तुम इंसान हो, इंसान बन के रहो, और सभी इंसानियत का ही सबक यहाँ सिखाया जाता है। तो यहाँ पर जो भी इस संस्था में आया, जो यहाँ पर आके इसमें अमर्ज हुआ, वो हिंदू है तो पूर्ण हिंदू है, और सिख है तो पूरा सिख है, ईसाई है तो पूरा ईसाई है, अगर मोहम्मदन है तो पूरा मोहम्मदन है, लेकिन निरंकार को जान लिया है इसलिए वो अपने आप को ये भी कह सकता है कि मैं निरंकारी हूँ।
पहले पहले आपने इस सेंटर में कौन कौन सी एक्टिविटीज शुरू की?
पहले पहल तो हमने सबसे पहले तो स्पोर्ट्स शुरू की, स्पोर्ट्स के साथ इंटरनल गेम्स थी, बॉक्सिंग थी, ये बैडमिंटन था, टेबल टेनिस था, ये हम स्पोर्ट्स शुरू करते थे, और बाहर में हम वॉलीबॉल या फुटबॉल या कबड्डी खेलने के लिए भी यहाँ से टीम जाती थी। तो पहले
अब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप यहाँ पर चलाते हैं?
एक्टिविटीज़ अभी एक तो जैसे मैंने पहले बचनों में कहा अपना मन के लेस्टर एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग स्कीम वाले जो हैं उनके साथ हमारा वी आर द शेयर होल्डर विद देम, और वो जो एक्टिविटीज़ है वो ELS इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज क्लासेस है, जहाँ के 30-35 स्टूडेंट्स हर समय में होते हैं, कहने का भाव के उनकी गिनती कभी थोड़ी ज़्यादा हो जाती कभी कम थी, तो एक तो वो है जो इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज है, दूसरा है हमारी स्पोर्ट्स चलती है, तीसरा है कि हमारा एडवाइस सेंटर है, और इसमें जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो ये है कि अभी हम फ्री एडवाइस बाय जो लॉ है उसका भी एक दिन हमने मुकर्रर किया हुआ है 11 से 3 बजे तक। तो किसी को भी लीगल एडवाइस लेनी हो तो यहाँ पर मिलती है 11 से 3 बजे तक, और अगर कोई चाहे सैटरडे आने के लिए तो उसके लिए भी टाइम फिक्स किया जा सकता है, वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं मिस्टर हरबंस सिंह, वो सैटरडे को और फ्राइडे इवनिंग को भी आते हैं। तो इसलिए आज कल ये 4-5 चीज़ें हमारी चल रही हैं, और हमने जो इसको इम्प्रूव करने के लिए जो एक सिचुएशन रखी है, सामने सजेशंस रखा हुआ है, ग्रांट के लिए अप्लाई किया है, वो है क्योंकि यहाँ के एल्डरली जो पीपल हैं वो चाहते हैं कि हमें कोई ड्रॉप इन सेंटर मिले, तो उसके लिए हमको थोड़ी सी बिल्डिंग में अल्टरेशन करके हमने उनको एल्डरली ड्रॉप इन सेंटर बनाने की हमारी एक योजना है। अगर हम उसमें कामयाब हो गए तो ठीक है, अदरवाइज़ एट दिस मोमेंट हम कभी कोच लेकर बच्चों को बाहर ले जाते हैं इनको घुमाने फिराने के लिए, और कभी बुज़ुर्गों को। तो म्यूज़िक की क्लासेस जो हैं हमारी यहाँ पर तकरीबन 30-35 स्टूडेंट्स हैं, हम फ्राइडे को स्पेशली एक म्यूज़िक इवनिंग रखा हुआ है जो हर फोर्थ वीक में एक आता है, उसमें हमारे क्लासिकल गाने इधर सिखाए जाते हैं, हमारे ज्ञान सिंह जी हैं वो तकरीबन म्यूज़िक में, और उनका लड़का है वो ढोल के सिखाते हैं या तबला सिखाते हैं, और ज्ञान सिंह जी हैं जो बाजा सिखाते हैं, और एक हमारे इधर और भी 3-4 हैं जिनको कभी कभी वॉलंटियर तौर पर वो आ जाते हैं। तो तबला बाजा और म्यूज़िक, और हमारा जो पंजाबी क्लासेस है वो भी इधर हम करते हैं कि अगर किसी ने पंजाबी सीखनी हो या हिंदी सीखनी हो तो उसके लिए भी हमारे पास वॉलंटियर टीचर हैं जो सीखते हैं।
काफ़ी काम आप यहाँ पर चला रहे हैं, तो उसमें आपके कितने लोग काम करते हैं और कितने वॉलंटियर्स हैं कुल मिला के सेंटर में?
हमारे लिस्टर के कुल तकरीबन 30-32 वॉलंटियर्स हैं जो काम करते हैं, और हमारी कमेटी जो है वो 8 मेंबर्स की है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बना हुआ है इस सेंटर को चलाने का, वो स्पोर्ट्स का कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट है जिसको हमने अपने धार्मिक उसके मुताबिक हमारा जो काम है वो चलता है। ऐसे बस आप ये समझिए कि टोटल मेंबरशिप जो है कमेटी की वो कभी 7 हो जाती है तो कभी 8 हो जाती है, कभी एक छोड़ देता है तो कभी एक और आ जाता है। तो एट द मोमेंट वॉलंटियर्स हमारे 30 हैं टोटल में, लेकिन एक्टिव वॉलंटियर्स जो हैं वो हमारे पास 7-8 ही हैं जो पूरे तौर पर इधर सहयोग देते हैं।
और लोग कितने यूज करते हैं करीबन आपका सेंटर?
हमारा सेंटर पहले तो ब्याह शादियों के लिए भी हम देते थे और शाम को पार्टियों के लिए भी देते थे, लेकिन चूंकि ये धार्मिक है और इसको हम हाल को सिर्फ अपने मेन हॉल को हमने रखा हुआ है अपने एक चैपल के तौर पर, एक धर्मस्थान के तौर पर, तो बाकी जो जगह है सारी हमारी बिल्डिंग वो जो भी संस्था मांगे जिस काम के लिए भी मांगे, वो कोई मीटिंग रखने के लिए या कोई ब्याह शादी के लिए तो हम अब भी देते हैं अगर तो, लेकिन जो जहाँ पर कोई मीट और शराब का सवाल आए वो उसके लिए हम हाल किसी को नहीं देते। तो आप ये समझिए कि कोई भी धर्म वाला, जैसे पहले हमारे पास हिंदू मत में जो गरबा के लिए हाल लेते थे, तो उन्होंने अभी अपने अपने एक एक करके सब ने हाल बना लिए हैं, तो ये हाल पहले उनके लिए इस्तेमाल हुआ करता था। तो उसके बाद कोई अगर गाने की संगीत पार्टी आए तो उसमें हमको सिर्फ एक मुश्किल आई कि वो लोग फिर अंदर में सिगरेट वगैरह इस्तेमाल करते थे, तो हमें फिर उसको स्टॉप करने के लिए और कोई साधन नहीं था, फिर हमने सिर्फ ब्याह शादी के लिए रख कर बाकी अभी हाल हम यूज करने के लिए देते हैं।
इस इन पिछले वर्षों में इस एरिया में क्या क्या चेंजेस हुई हैं जो आपको याद हो?
इस पिछले वर्षों में चेंजेस तो बहुत हुई हैं। यहाँ पर तो पहले गाड़ियाँ जो थी बस ऐसे ही घूम रही होती थी, लोग भाग दौड़ करके ब्रेकेज करके दौड़ जाते थे। फिर सिटी काउंसिल ने बहुत खर्चा करके इर्द गिर्द में स्टॉपेज लगाए, रास्ते में बम्प्स लगाए और किसी कई रोड को वन वे किया, कई को टू वे रखा। तो रेलवे स्टेशन के नज़दीक भी बहुत चेंजेस आई और इसके साथ में अंडरपास भी बनाया गया हमारे रेलवे स्टेशन के पास, तो रेलवे स्टेशन वाली वन वे स्ट्रीट बनाई। तो ऐसे करके जो 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 भी डिफ़िकल्टीज आई, क्योंकि ये एरिया जो था इसको सिटी में सबसे बैक एरिया कहा जाता था, लेकिन इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए सिटी काउंसिल ने बहुत मदद किया। और मैं तो एक दफ़ा देखा था कि गाड़ी उधर खड़ी थी पुलिस वालों की, और कुछ लोग आए जो उन्होंने पुलिस वालों ने उनको कहा कि आप यहाँ क्यों ऐसे हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, तो वो कहने लगे हम नहीं थे, वो दूसरी जगह पर चले गए। जब वो पुलिस वाले उधर हुए तो 8 आदमी ने उठा के गाड़ी उनकी अपसाइड डाउन कर दी, और वो पुलिस वाले आए किसने किया तो बोलते मुंडे उठा दिए, वो ऐसे शोल्डर उठा दिए ऊपर के हम नहीं जानते। तो ऐसी ऐसी बातें इधर पहले हुआ करती थी, तो अब वो बातें नहीं हैं। तो इसलिए इसको पहले जो गलत कामों के लिए भी ये एरिया बहुत इस्तेमाल होता था, लेकिन बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स इन्ही सालों में हुई हैं। और अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम ये कह सकें कि यहाँ पर बहुत गलत इस एरिए का इस्तेमाल होता है, तो बहुत इम्प्रूवड है क्योंकि सिटी काउंसिल ने इसमें हमारे देखते देखते बहुत कुछ मदद किया। ये जो हमारे सामने वाली स्ट्रीट है जो प्रीवेंट स्ट्रीट है, ये तो टू वे ही रही पहले से ही, और टू वे ही है, तो बाकी स्ट्रीट्स बहुत सी वन वे हो गई।
तो आपको यहाँ पर जो पिछले 10-12 साल में लोग मिले हैं उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे?
हमारे 10-12 साल में जो लोग मिले हैं, सबसे पहले तो मैं सामने वाले जो बिल्डिंग है वो एक बहुत नाइस आदमी है, वो उनका बहुत बड़ा कार पार्क है, वो हमें बहुत मदद देते हैं जहाँ कार खड़ी करने के लिए जब बाबा जी इधर आते हैं। और इधर साइड में हमारे अल्कोहलिक सेंटर बना है, ये यहाँ पर पहले शौंकी ब्रदर्स का एक बिल्डिंग होती थी, फिर उसने दूसरी खरीदी, फिर तीसरी खरीदी, फिर उसने बेच दी, तो अल्कोहलिक वाला सेंटर बना, तो इस साइड में भी वो कार पार्क बना। और फिर उसके बाद हमारी बैक में जहाँ हमारी बैक डोर थी वहाँ पर इम्प्रूव्ड काफ़ी हुआ, पावर स्टेशन बना, इधर सब स्टेशन बना। तो ये यहाँ के लोग जो थे वो पहले तो बहुत रूड थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो जो उन्होंने हमारा बिहेवियर देखा, तो सामने कुछ इटालियन रहते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो पहले तो मकान बिक्री नहीं होते थे, अभी तो सब इम्प्रूवमेंट देखकर हर चीज़ जो है स्मूथ चल रही है।
और कोई जो कम्युनिटी इवेंट्स हैं आपको याद हो जिनमें आपने भाग लिया हो?
क्या जी?
जैसे कि दिवाली वगैरह जो सभी यहाँ पर फेस्टिवल्स लेस्टर में हाईफील्ड्स में मनाए जाते हैं, उनमें आपका सेंटर किस तरह भाग लेता है?
हम जो जैसे यहाँ पर ईद होती है तो भी लोग हमें इनवाइट करते हैं, हम जाते हैं। फिर इधर कभी विसाखी का प्रोग्राम होता है, जुलूस होता है, यहाँ से निकलते हैं अजलास, तो हम चूंकि डायरेक्ट तो उनमें भाग नहीं लेते, लेकिन जब हम इनवाइटेड होते हैं तो फिर हमें उनके साथ ज़रूर शेयर करते हैं, हम उनकी जो भी व्यवस्था होती है उसके साथ हम जाते जाते हैं।
और कुछ आप कहना चाहेंगे जो पिछले 10-12 वर्षों में आपके निरंकारी सेंटर में कोई ऐसी यादगार इवेंट्स हो या कोई ऐसा समय हो?
हमने यहाँ पर यही मैं कहूँगा कि कल्चरल और म्यूजिकल प्रोग्राम इधर किए, जब नसरत अली पहले पहले इधर आए तो उनका पहला फंक्शन जो म्यूज़िक का था वो हमारे ही सेंटर में हुआ था। तो इधर वो टाइम में तो वो इतने मोटे नहीं थे, लेकिन आजकल तो बहुत हाई क्लास के आदमी बने हैं, लेकिन उस टाइम में जब पहला प्रोग्राम हुआ तो वो यहाँ हुआ। और इधर हमारे पास जो म्यूज़िक सिखाने वाले थे वो भी मिस्टर वारू जी थे, वो भी हमें याद है कि वो इधर म्यूज़िक की क्लासेस और म्यूज़िक को बहुत इम्प्रूवमेंट दिया उन्होंने। तो ऐसे करके ज़्यादा समय तो ऐसे ही लगा है, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें और या खुशी भी समझ लो उस वक्त ही हुई जब हमारा बाहर का हाल बन रहा था। उस वक्त कुछ लोगों ने वो हाल बनने के लिए मनाही भी की और कुछ लोगों ने उस बनने में हमें हेल्प भी किया। तो कुछ लोग चाहते थे कि यहाँ ना बने, कुछ लोग चाहते थे बने, लेकिन फिर भी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ के मौके से भी वो हम तो, लेकिन ऐसी ख़ास कोई बात इवेंट्स जिसको हम कहें कि बहुत कोई हुआ वो नहीं है। हम 14 साल से तकरीबन इस सेंटर को रन करते हैं फॉर द लास्ट 14 इयर्स, और डिफरेंट जगह से डिफरेंट संस्थाओं ने हमें काफ़ी मदद की है। जैसे एक तो एक जो एल्डरली मिस्टर गंबाडिया हैं, वो इंचार्ज हैं, वो भी हमारे साथ संपर्क में हैं। वो इंचार्ज हैं उनके
एज
कंसर्न वालों के, तो उनके साथ फिर हमने कॉन्टेक्ट तो हमने सबके साथ बना के रखे, रेडियो वालों से, बीबीसी रेडियो से, लिस्ट मर्करी से, और सनराइज रेडियो वालों से। उससे पहले भी इधर काफ़ी शुरू से ही हमने कॉन्टेक्ट रखे हैं, लेकिन वो कोई बात ऐसी मैं पर्टिकुलर नहीं कह सकता कि जो ऐसी कोई हो जो बहुत कुछ कहने वाली हो।
आपके कई इवेंट्स और कई बार आपके सेंटर के समाचार आए हैं, जैसे पिछले ही हफ्ते यहाँ पर वो लैंग्वेज लैब का आपने शायद 5वां जन्मदिन
जी
मनाया था
जी।
ये जो लैंग्वेज लैब है आपका
जी,
उसकी क्या खासियत या खूबी है?
ये इसकी खूबी यही है कि यहाँ पर हर आदमी आकर ट्रेनिंग भी ले सकता है, और उसके साथ साथ उसको ट्रेनिंग के भी पैसे मिलते हैं, और वो अपनी ओन लैंग्वेज में बातचीत कर सकता है। और हमारे पास किचन फैसिलिटी है, जो आते हैं बहुत से ट्रेनिंग्स में ऐसे नहीं मिलता कि उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलें, और यहाँ हमारे पास किचन के साथ साथ और भी बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं जो हम सबको देते हैं। और फिर बाहर में वो हर किस्म की दे एंजॉय लॉट ऑफ फैसिलिटीज़। लेकिन इसमें इस लैब में एक ऐसा सेटअप किए हुए हैं, लेबोरेटरी है जो जो आप वो बैठकर अगर सुनना चाहें तो वो कानों में एम्पलीफायर वगैरह लगाकर सुनते हैं। और इधर एक टीचर्स गुड हैं जो सारी चीज़ समझते हैं, वो दो तीन लैंग्वेजेस जानते हैं, इसलिए ज़्यादा खूबी यही है कि इनको फैसिलिटीज़ काफ़ी मिल सकती हैं।
ये आपके ट्रेनीज हैं वो सभी कम्युनिटीज़ के हैं, जैसे कि हिंदी बोलने वाले, गुजराती, पंजाबी और कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस वाले भी हैं ना?
इसमें मैंने देखा है कि चार किस्म के सभी आते हैं तकरीबन, फॉरेन लैंग्वेज वाले भी आते हैं, हिंदी बोलने भी, गुजराती वाले भी हैं और बंगाली भी बोलते हैं, तो सभी लैंग्वेज वाले आते हैं। लेकिन फ़ायदा उनको सबको यही है कि वो इधर अपने घर वाले माहौल की तरह ही आके जाते हैं, ऐसे नहीं कि उनको कोई ऑफिशियल माहौल है इधर या बहुत टाइट होना पड़ता है, घरेलू माहौल में वो आराम से सीख कर लेडीज़ भी, आदमी भी, सभी सीख के जाते हैं, चाहे वो थोड़ा पड़ा है चाहे ज़्यादा पड़ा है, उसको हर किस्म की सहूलत इधर मिलती है।
और कुछ कहना चाहेंगे आप एंड में?
एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें यहाँ पर इंटरफेथ नाम की एक सोसाइटी मिली थी और उसके इंचार्ज डॉक्टर असल हैं, उन्होंने और सिटी काउंसिल वालों ने मिलकर हमें काफ़ी मदद की। हम एबे पार्क शो में हर साल इंटरफेथ टेंट में जाकर हिस्सा लेते हैं, जहां पर सभी कम्युनिटीज़ होती हैं धार्मिक, और हमारा भी संदनकारी मिशन का उधर उनके साथ स्टॉल होता है। और ये जो इंटरफेथ है, इनके साथ 8 से लेकर 14 संस्थाएं और मिली हुई हैं जो हम सब मिलकर फंक्शंस करते हैं। तो उनकी मीटिंगें जो मीटिंग्स जो हैं वो इस सेंटर में भी होती हैं, और सिक्स हाफ मून क्रेसेंट में जो ओडबी में है वहाँ भी होती हैं। तो इससे हमें बहुत लाभ है और उनको भी हमारी संस्था से बहुत लाभ है।
शुक्रिया।